समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
सुप्रभात। आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर कार्यक्रम आज सवेरे में आप सभी को फरहत नाज का नमस्कार। कहते हैं सपने सच करने के लिए पहले सपने देखना पड़ता है, इसीलिए अगर आप भी अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो आज से ही सपने देखना शुरू कर दें। फिलहाल आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम आपको देंगे देश और दुनिया के समाचार और वो सभी जानकारी जिनका है आपसे सरोकार। और आज मेरा साथ दे रही है मेरी सहयोगी सुभद्रा रामचंद्रन। नमस्कार सुभद्रा।
Namaskar Farhat and hello friends, and of course as you pointed out Farhat, follow your dreams and inspire others to do the same, because all our dreams, plans can come true if we try hard. It's hard work, courage and determination. So Farhat, let's begin this wonderful session of Aaj Savere with some news headlines, right?
जी सुभद्रा, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात यात्रा से जुड़ी खबर से। प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य प्राप्त करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। इस लक्ष्य की स्वतंत्रता आंदोलन से तुलना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि अगर पिछली पीढ़ियां 20 से 35 वर्ष में औपनिवेशिक शासकों को देश से बाहर निकाल सकती हैं, तो आज के 140 करोड़ नागरिक भी अगले 25 वर्ष में विकसित भारत के सपने को साकार कर सकते हैं। कल गुजरात के गांधीनगर में गुजरात शहरी विकास 20 वर्ष की गाथा के उत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारत की महत्वपूर्ण आर्थिक वृद्धि और वैश्विक प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलने पर गर्व व्यक्त किया। भारत के चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर श्री मोदी ने कहा कि पूर्व औपनिवेशिक शक्ति से आगे निकलना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि अब तीसरे स्थान पर पहुंचने की कोशिशें जोर पकड़ रही हैं।
न्यू दिल्ली,
हम दुनिया की चौथी इकोनॉमी बने और मुझे याद है हम जब 6 से 5 बने थे तब देश में और ही उमंग था, और उसका कारण यह था कि 250 साल तक जिन्होंने हम पर राज किया था ना, उस यूके को पीछे छोड़कर के हम 5 बने थे। लेकिन अब 3 कब बनोगे इसका दबाव बढ़ रहा है। अब देश इंतजार करने को तैयार नहीं है, और अगर कोई ने इंतजार करने के लिए कहा तो पीछे से नारा आता है मोदी है तो मुमकिन है।
प्रधानमंत्री मोदी की गुजरात की 2 दिन की यात्रा कल संपन्न हो गई, और इस दौरान श्री मोदी ने 82,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।
New Delhi's message of zero tolerance against terrorism is echoing worldwide, with India's multi-party delegations holding back-to-back interactions with world leaders, parliamentarians, think tanks, media and civil society in different countries to further unmask Pakistan's cross-border terrorism. In Panama, the all-party Indian delegation headed by Congress MP Shashi Tharoor held a meeting with the Panama Assembly President Dana Castaneda. During his meeting, Mr. Tharoor said that India had no interest in starting a war, but felt that a terrorist act must not go unpunished.
It was an action of retribution, not the first salvo in a long war. We just wanted to send a clear message to the terrorists. We conducted the strikes at night between 1:05 and 1:30 in the middle of the night, so there would be very few civilians around at that time. Second, we refused to touch any government facilities, even any Pakistani military facilities and any civilian facilities, only known terrorist bases.
In South Africa, the all-party delegation led by NCP SCP Supriya Sule advocated India's zero-tolerance policy towards cross-border terrorism. They emphasized the need to stop differentiating the terrorists and their backers, dismantling the cross-border terrorism infrastructure developed and used against India for several decades. All-party Indian delegation headed by Shiv Sena MP Shrikant Shinde held a meeting with Professor Berthold Ulungu, who is an MP and President of Committee of Foreign Affairs of National Assembly of Congo. During the meeting, the delegation apprised him about the terrorist attack in Pahalgam and India's measured, calibrated and non-escalatory response. In Singapore, an all-party parliamentary delegation led by JDU MP Sanjay Jha called on Edwin Tong, Minister for Law and Second Minister for Home Affairs of that country. The delegation conveyed India's resolve in fighting terrorism in all its forms. During its visit to France, the all-party delegation led by BJP MP Ravi Shankar Prasad met the members of parliament in the French National Assembly. An all-party delegation led by DMK MP Kanimuri Karunanidhi arrived in Greece, where it called on senior officials and emphasized India's new normal of zero tolerance against cross-border terrorism. India has received foreign direct investment FDI inflows worth $81.04 billion in the financial year 2024-25. It reflects a 14% increase from $71.28 billion in the financial year 2023-24. Minister of Commerce and Industry in a statement said that the services sector emerged as the top recipient of FDI equity in 2024-25 by attracting 19% of total inflows. FDI into the services sector also rose by 40.77% to $9.35 billion from $6.64 billion in the previous year.
और सुभद्रा, और आयकर रिटर्न भरने के लिए जो है एक खुशखबरी है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस वर्ष आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है। सीबीडीटी ने एक बयान में कहा कि इस विस्तार से आईटीआर फॉर्म में महत्वपूर्ण संशोधन, सिस्टम डेवलपमेंट की जरूरतों और टीडीएस क्रेडिट रिफ्लेक्शन के कारण लोगों को अधिक समय मिलेगा और इससे सभी के लिए एक सहज और अधिक सटीक फाइलिंग सुनिश्चित होगा। इस विस्तार से हितधारकों द्वारा उठाई गई चिंताओं का भी समाधान होगा।
U.S. President Donald Trump has issued a sharp rebuke to Russian President Vladimir Putin over Moscow's escalating military offensive in northeastern Ukraine, accusing him of playing with fire, rejecting ceasefire negotiations amid intensifying violence. Trump's latest warning came as Russian forces launched some of the most lethal drone and missile strikes to date, striking Ukrainian cities and infrastructure while making gains along the Kharkiv front.
वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि इस वर्ष मानसून सीजन में देश भर में वर्षा सामान्य से अधिक होने की संभावना है। मौसम विभाग ने यह भी बताया कि इस वर्ष मानसून जल्दी शुरू हो गया है और अगले महीने उत्तर पश्चिम भारत, मध्य और पूर्व भारत के आसपास के क्षेत्रों में हीट वेव के दिनों की संख्या कम रहने की उम्मीद है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव एम रविचंद्रन ने कहा कि सामान्य से अधिक वर्षा न केवल दक्षिणी प्रायद्वीप में बल्कि मध्य भारत में भी होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य वर्षा की उम्मीद है, जबकि उत्तर पूर्वी भारत में कम वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि जून से सितंबर के बीच होने वाली वर्षा मौसमी औसत से अधिक रहने की संभावना है। उन्होंने ये भी बताया कि इस अवधि के दौरान देश में वर्षा सामान्य से ऊपर रहेगी।
देश के लिए एक खुशखबरी है, वर्षा सामान्य से ज्यादा होने का संभावना है और क्वांटिटेटिवली 106% वर्षा होने का संभावना है। 5 जून से 30 सितंबर का क्यूमुलेटिव रेनफॉल तो देखें। सिमिलरली जून महीने की बात करें, जून महीने में भी एबव नॉर्मल रेनफॉल होने का संभावना है और हीट वेव कंडीशंस भी बिलो नॉर्मल होने का संभावना है।
ये सकारात्मक मानसून पूर्वानुमान काफी फायदेमंद साबित होगा। इससे फसल उत्पादन में वृद्धि होने की भी उम्मीद है, सिंचाई प्रणालियों पर दबाव कम होगा और ग्रामीण जीवन यापन को समर्थन मिलेगा। साथ ही इससे जल उपलब्धता में सुधार की भी आशाएं जगी हैं।
गेटिंग टू सम स्पोर्ट्स न्यूज़, इन बैडमिंटन, first round actions at the Singapore Open will resume on day 2 today, with Indian players aiming to bounce back after a tough start yesterday. Ace shuttler Lakshya Sen will face off against Lin Chun-Yi of Taiwan in the men's singles first round, while the women's singles draw will see Indian shuttlers Akarshi Kashyap, Unnati Hooda and Anupama Upadhyay competing in their respective round of 32 matches today. Earlier, star Indian shuttlers PV Sindhu and HS Pranoy have advanced to the singles second rounds yesterday.
और सुभद्रा, बैडमिंटन के बाद आईपीएल क्रिकेट की बात कर लेते हैं। प्रतियोगिता में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल रात लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में समूह स्तर के अंतिम मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। पंजाब किंग्स अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। कल पहले क्वालिफायर मैच में रॉयल चैलेंजर्स और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगे। शुक्रवार को एलिमिनेटर मैच में तीसरे स्थान पर मौजूद गुजरात टाइटंस का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। आईपीएल का दूसरा क्वालिफायर मैच 1 जून को और फाइनल मैच 3 जून को खेला जाएगा।
As we celebrate the success of Operation Sindoor, The nation salutes the valor of the Indian soldiers. As a tribute to the armed forces, Akashvani News is presenting a special series. Today, we remember Paramveer Chakra awardee Subedar Joginder Singh, who made the supreme sacrifice during the Sino-Indian War in 1962.
During the 1962 Sino-Indian War, Subedar Joginder Singh led a platoon in Tawang sector of Nefa, holding a strategic position on a ridge in the Tongpengla area on the Bamla axis. On October 20th, his platoon observed a significant Chinese troop buildup across the McMahon line, signaling an impending attack. At dawn on October 23rd, the Chinese launched a major assault in three waves of roughly 200 soldiers each, supported by artillery and mortar fire. Despite being heavily outnumbered, Subedar Singh's platoon offered fierce resistance, repelling the first wave with heavy enemy casualties. Wounded in the thigh, he refused evacuation and continued to inspire his men. As the final and most forceful wave advanced, with ammunition depleted and few men remaining, Subedar Singh took control of a light machine gun, inflicting significant damage. When the situation became desperate, he and his remaining soldiers charged the enemy with fixed bayonets. They engaged in close combat, killing many before being overwhelmed. For his extraordinary courage, leadership, and devotion to duty, Subedar Joginder Singh was posthumously awarded the Paramveer Chakra. Saklain Akhtar for Akashwani News, Delhi.
और अब रुक करते हैं महानगरों की खबरों का. सुभद्रा, सबसे पहले क्या है आपके पास चेन्नई में?
Yes, starting with news from Chennai, Tamil Nadu Agricultural University has forecast a normal southwest monsoon from June to September for most districts in Tamil Nadu this year. Near normal rainfall is expected in Coimbatore, Tirupur, Karur, Namakkal, Tenkasi, Tirunelveli, Tuticorin and Kanyakumari districts. Among all the districts, the Nilgiris is expected to receive the highest rainfall of 860 millimetres, while Tuticorin is expected to receive the lowest at 59 millimetres. The US Consulate Office in Chennai's Tenampet received a bomb threat yesterday, triggering a prompt response from security agencies, the Bomb Detection and Disposal Squad, along with the Dog Squad, were immediately deployed to the site to conduct thorough checks and ensure the safety of the premises. Security around the consulate has been heightened, and officials have assured that all necessary protocols are being followed to prevent any potential risk. A giant roller coaster at an amusement park near Chennai experienced a mechanical failure, leaving more than 30 riders stranded in mid-air for over 3 hours. The suspended passengers were stuck at a height of 70 feet. The fire and rescue services immediately mobilized multiple units to the scene after receiving distress calls. Preliminary reports suggest a possible hydraulic system failure. Getting to Bengaluru now, Karnataka's Skill Development Minister has stated that the future of rural youth will be safeguarded through schemes focused on empowerment and innovation. He was speaking at a conference on the National Rural Livelihood Mission held in Bengaluru yesterday. He said that Deen Dayal Upadhyay's Rural Skill Development Program is shaping the future of young people, calling it a key initiative aimed at empowering and engaging rural youth in livelihood missions. Through this program, youth are equipped with the skills necessary to secure decent employment. This, he added, will enhance their livelihoods and contribute to poverty alleviation. He emphasized that by economically empowering the youth, Karnataka is also strengthening its financial standing. Let's go to Hyderabad now. Telangana Chief Minister A. Revanth Reddy has said the state government has procured 64.5 lakh tons of paddy till date during the current Rabi season, as against 42 lakh tons during the same season last year. An official statement said 90% of paddy procurement was completed and the government credited the payments to the farmers within 48 hours of paddy procurement. In view of the advanced southwest monsoon, the Chief Minister instructed the district collectors to prepare an action plan and work out accordingly in the procurement of paddy in some places. He also assured that the government will purchase all paddy stockpile in the market yards. Farhad, what about the other news?
जी सुभद्रा, जैसा कि हम सब लोग सुन रहे हैं कई दिनों से कि कोविड के जो मामले हैं वो दिन पर दिन लगातार बन रहे हैं, और लेकिन दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल कोविड को लेकर कहा है कि किसी भी तरह की आपातकालीन या चिंताजनक स्थिति यहां पर नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ सामान्य वायरल संक्रमण है जो सामान्य सर्दी या खांसी जैसे लक्षण पैदा करता है। मुख्यमंत्री ने दिल्लीवासियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि सभी अस्पताल सतर्क हैं और किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जा रही है। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने राजधानी के सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल का कल निरीक्षण किया। इस दौरान श्री सिंह ने अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, साफ सफाई और मरीजों की सुविधाओं की स्थिति का जायजा लिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली की जनता को बेहतर चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। और अब महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कल मराठा शासक छत्रपति संभाजी महाराज के सम्मान में राज्य के सांस्कृतिक विभाग द्वारा स्थापित राज्य गीत प्रेरणा पुरस्कार का उद्घाटन किया। ये पुरस्कार स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर द्वारा लिखे गए देशभक्ति गीत अनाड़ी मी अनंत मी के लिए दिया गया। ये पुरस्कार वीडी सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने प्राप्त किया और इसमें 2,00,000 रूपये का चेक और एक स्मृति चिन्ह शामिल है। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सांस्कृतिक मामलों के मंत्री आशीष शेलार सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। वहीं महाराष्ट्र के पालघर जिले में मई के पहले हफ्ते में हुई बेमौसम बारिश से 9,000 से ज्यादा किसान और मछुआरे प्रभावित हुए हैं और प्रशासन ने नुकसान का आकलन किया है। जिला प्रशासन की ओर से जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से वित्तीय सहायता के लिए सरकार को एक व्यापक राहत प्रस्ताव भेजा गया। प्रशासन द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार बारिश के कारण 2,000 से अधिक घर नष्ट हो गए हैं और इस संबंध में एक प्रस्ताव राज्य सरकार को भी सौंपा गया है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि बेमौसम बारिश में काफी किसानों की फसलें भी बर्बाद हुई हैं। इसके अलावा 99 नावें आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गई हैं तथा 2 नावें नष्ट हुई हैं, जिसके लिए प्रशासन ने प्रभावित मछुआरों के लिए SDRF से वित्तीय सहायता की मांग की है। और अब कोलकाता का रुख कर लेते हैं, तो वहां पर भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 2 दिनों तक ये स्थिति बनी रहेगी। ओडिशा तट से दूर उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है और इस कम दबाव के क्षेत्र के उत्तर की ओर बढ़ने की उम्मीद है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा उत्तर पूर्व भारत के कुछ हिस्सों में पहुंच चुकी है। आने वाले 2-3 दिनों में मानसून उत्तर बंगाल और सिक्किम के उप हिमालयी जिलों में पहुंच जाएगा। मौसम विभाग के अलीपुर मौसम कार्यालय ने आकाशवाणी को यह जानकारी दी है और बताया है कि मंगलवार को उत्तर बंगाल के जिलों में बारिश हो रही है। IMD ने आने वाले दिनों में उत्तर बंगाल के सभी जिलों में मध्यम बारिश का भी अनुमान व्यक्त किया है और समुद्र की खराब स्थिति के कारण मछुआरों को 31 मई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। महानगरों की खबरों के बाद अब मौसम का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले बात दिल्ली के मौसम की, तो आज अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा और कोलकाता में भी बादल छाए रहेंगे और बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान रहेगा 21 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। The minimum temperature was 28 degrees Celsius, maximum will be around 36. Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with continuous rain. The minimum temperature was 20 degrees Celsius, maximum will be around 27 degrees. Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The temperature will hover between a minimum of 23 degrees and a maximum of 31 degrees Celsius. And Farhat, moving on to our next segment. Today is a very important day for women. Menstrual hygiene awareness is extremely important for health and well-being of women and girls. And of course, educating oneself about menstrual health can boost your self-confidence, empower girls and women to manage their bodies and health. So today is a menstrual hygiene day, and this year's theme is Together for a Period-Friendly World, reminds us of the importance of collective action. The goal, of course, is clear: to ensure that menstruation never limits anyone's access to education, health or opportunity.
جی بالکل سبھدرا, اور پہلے ایک ہچک ہوتی تھی لوگوں میں اس بات کرنے کے لیے, لیکن آج یہ دن جو ہے وہ اتنا مہتوپورن ہو گیا ہے کہ نکڑ ناٹک ہو چاہے پھر جو ہے الگ الگ کاریکرم ہو, جاگرکتا ابھیان ہو, اس پر چلائے جا رہے ہیں. انفیکٹ فلموں میں بھی جو ہے اس کو بہت ہی سیریس طریقے سے سنجیدگی کے ساتھ لیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کے اندر اس کو لے کر جو ہے وہ جاگرکتا پیدا ہو اور اس پر کھل کر جو ہے
Women are not shy anymore. They just come out of their shells and follow the movement. Of course, this global movement calls for breaking the stigma, promoting access to safe menstrual products as well, clean sanitation, accurate information.
اور اب آئیے اتہاس جگت کی کچھ اور گھٹناؤں کا ذکر کر لیتے ہیں. آج ہی کے دن 1969 کو دو امریکی بندروں نے ناسا کے جوپیٹر راکٹ سے انترکش کی سفل یاترا پوری کی. ان دونوں بندروں کا نام ایبل اور مس بیکر تھا. یہ مانو انترکش یاترا کی دشا میں ایک مہتوپورن قدم تھا.
1804 on this day Napoleon Bonaparte proclaimed the establishment of the French Empire and 1929 the first all color talking picture on with the show produced by Warner Brothers opened in New York. And this is very interesting. 1934, the Diane Quintilips, the first set of documented Quintilips, I can't even pronounce it properly, which means five babies at one go to survive, were born this day in 1934. And 1936 this day, computer scientist Alan Turing submits on computable numbers for publication in which he set out the theoretical basis for modern computers.
اور وہیں اگر بات کی جائے 1967 کی تو آج ہی کے دن برٹش ناوک سر فرانسس چٹچسٹر نے اکیلے ناو میں وشو کا چکر لگا کر اپنی یاترا پوری کی. یہ نوکائن کے اتہاس میں ایک ایتہاسک اپلبدھی تھی.
And 1952 this day, Greece women were given the legal right to vote and run for office the following January. Eleni Sakura became the first woman member of parliament. And also 1957, the National Academy of Recording Arts and Sciences is established. They become known for the Grammy Award, which started in 1958.
1974 میں بھارت کے تارپور پرمانو ارجا سنیتر میں پہلا ری ایکٹر شروع ہوا. یہ بھارت کے پرمانو ارجا کاریکرم میں ایک میل کا پتھر تھا. اور اب آئیے ہم اپنے آخری سیگمنٹ کی اور بڑھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں کچھ جانی مانی ہستیوں کو. تو سبھدرا, سب سے پہلے ہم یاد کر رہے ہیں ڈی وی پلسکر کو. ان کا اپنا پہلا کاریکرم 14 کی آیو میں پنجاب میں ہری ولبھ سنگیت سمیلن میں دیا. اترادھیکار میں انہیں گوالیا گھرانا اور گندھرو مہاودیالے ملا, لیکن انیہ گھرانوں اور شیلیوں کی سندر وشیشتاؤں کو اپنانے کے لیے ہمیشہ یہ تیار رہتے تھے. ڈی وی پلسکر کی آواز بہت مدھر اور سریلی تھی. ان کے آلاپ ان کے گائے راگ کا اسپشٹ ریکھانکن کرتے تھے. اس کے بعد ان کی سہج شیلی کی تانوں سے سسجت بندشیں بھی آتی تھیں. اور فلم بیجو باورا میں استاد امیر خان کے ساتھ ایک اوسمرنیہ یوگل بندی کے لیے بھی انہیں جانا جاتا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے بہت ہی اچھے اچھے بھجن بھی گائے. تو آئیے سن لیتے ہیں انہی کا ایک یہ بھجن.
چلت رام کلکی کلکی اٹھت دھایا کلکی کلکی اٹھت دھایا گرت بھومی لٹپٹایا گرت بھومی لٹپٹایا.
1723, remembering one of the greatest poets in Urdu literature, Mir Muhammad Thaqi, also called the God of Poetry for his unparalleled contributions to Urdu ghazals. Born in Agra, Mir experienced a life full of struggles, heartbreaks and hardships which deeply influences poetic expressions. And Farhad, people love James Bond movies and the soundtrack of the same. Remembering the creator of this charismatic character, Bond, whose name was Ian Fleming, who thrilled us with his novels of suspense and fiction. Novelist Ian Fleming passed away this day at the age of 56 in the year 1964. A stylish, high-living British Secret Service agent, 007, continues to thrill fans till date. And of course, packed with violent action, hairbreadth escapes, international espionage, clever spy gadgets, intrigue and gorgeous women, his books became international best sellers.
और आज ही के दिन जन्म हुआ था विनायक दामोदर सावरकर का। न सिर्फ एक क्रांतिकारी थे बल्कि एक भाषाविद, बुद्धिवादी, कवि, अप्रतिम क्रांतिकारी, दृढ़ राजनेता, समर्पित समाज सुधारक, दार्शनिक या फिर महान कवि या यूं कहें महान इतिहासकार थे। उनके इन्हीं गुणों ने महानतम लोगों की श्रेणी में उच्च पायदान पर लाकर इन्हें खड़ा किया। सावरकर वो पहले कवि थे जिसने कलम कागज के बिना जेल की दीवारों पर पत्थर के टुकड़ों से कविताएं लिखी। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी रची 10,000 से अधिक पंक्तियों को प्राचीन वैदिक साधना के अनुरूप वर्षों स्मृति में सुरक्षित रखा जब तक वे किसी न किसी तरह देशवासियों तक नहीं पहुंच पाई।
जॉन फॉगेटी, द लीड सिंगर, लीड गिटारिस्ट ऑफ द एंड प्रिंसिपल सॉन्ग राइटर ऑफ द वेरी फेमस CCR, द क्रीडेंस क्लियरवाटर रिवाइवल, टर्न्स 80 टुडे। व्हेन क्रीडेंस क्लियरवाटर रिवाइवल एंटर्ड द रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम इन 1993, 6 ऑफ देयर 7 एल्बम्स वेंट प्लैटिनम। फॉगेटी'स डिस्टिंक्ट स्वॉम्प रॉक स्टाइल इज एन इन्फ्लुएंस ऑन काउंटलेस आर्टिस्ट।
और श्रोताओ, आज ही के दिन हमें अलविदा कहा भारतीय सिनेमा इतिहास के अग्रणी निर्माता निर्देशक महबूब खान ने। हिंदी सिनेमा जगत के युग पुरुष महबूब खान को एक ऐसी शख्सियत के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने दर्शकों को लगभग 3 दशक तक क्लासिक फिल्मों का तोहफा दिया। वे युवावस्था में घर से भागकर मुंबई आए और एक स्टूडियो में काम करने लगे। भारतीय सिनेमा को आधुनिकतम तकनीकी से संवारने में अग्रणी निर्माता निर्देशक महबूब खान का अहम किरदार रहा। महबूब खान हॉलीवुड की फिल्मों से बहुत अधिक प्रभावित थे और भारत में भी उच्च स्तर के चलचित्रों का निर्माण करने में जुटे रहते। वर्ष 1957 में प्रदर्शित फिल्म मदर इंडिया महबूब खान की सर्वाधिक सफल फिल्मों में शुमार की जाती है। उन्होंने मदर इंडिया से पहले भी इसी कहानी पर 1949 में औरत फिल्म का निर्माण किया था और वो इस फिल्म का नाम भी औरत ही रखना चाहते थे, लेकिन नरगिस के कहने पर इन्होंने इसका नाम रखा मदर इंडिया। तो आइए सुन लेते हैं फिल्म मदर इंडिया से ये गीत।
दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। गिर गिर के
महान अदाकारा नरगिस को फिल्म इंडस्ट्री में लाने में महबूब खान की अहम भूमिका रही और फिल्म मदर इंडिया के निर्माण ने महबूब खान को सर्वाधिक ख्याति दिलाई क्योंकि मदर इंडिया को विदेशी भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया और इस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए भी फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता और इसके अलावा भारत सरकार ने इस फिल्म के लिए एक डाक टिकट भी जारी किया था।
And friends, remembering the blues legend T-Bone Walker, who pioneered the electric blues sound, thus bringing the modern blues. He was noted as a clever songwriter. His 1947 hit, Call It Stormy Monday, became one of the most enduring modern blues standards. Other tunes of Walker included Bobby Sox Blues, Cold Cold Feeling, and T-Bone Shuffle. That's the one that is playing in the background. Hear it now.
और अब हम याद कर रहे हैं भारत के प्रसिद्ध कवियों, लेखकों और साहित्यकारों में से एक पंडित गोपाल प्रसाद व्यास को। वे ब्रजभाषा के कवि, समीक्षक, व्याकरण, साहित्य शास्त्र, रस रीति, अलंकार, नायिका भेद और पिंगल के ममग्र माने जाते हैं। पंडित जी हिंदी में व्यंग्य विनोद की नई धारा के जनक थे। गोपाल प्रसाद व्यास हास्य रस में पत्नीवाद के प्रवर्तक माने जाते रहे। वे सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक, व्यंग्य विनोद के प्रतिष्ठा प्राप्त कवि और लेखक थे और हास्य सावतार के नाम से भी प्रसिद्ध थे।
Today, a birthday of an eminent theoretical physicist and author and philosopher, V.V. Raman, is Emeritus Professor of Physics and Humanities at the Rochester Institute of Technology. And of course, he's lectured and written on his Indian heritage and culture and has also authored books and articles on the intersection of science and religion. He served the UNESCO for several years, living in many nations as an educational expert for the United Nations. And friends, Australian singer-actress Kylie Minogue celebrates her birthday today. Kylie could not make a dent on the music charts of UK and USA, but has sold in excess 60 million records, achieved her greatest successes in Australia, Europe, Asia, Latin America. She was awarded an OBE in 2008 for services to music.
श्रोता, इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का. हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा.
Stay tuned for coming up now with Samachar Prabhat, the Hindi News Bulletin, followed by morning news in English at 8:15. Thanks for tuning in, friends. Have a great day. Namaskar.
जी बिल्कुल, नमस्कार. और आप सुनते रहिए आकाशवाणी पर ये कार्यक्रम आज सवेरे. और आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सपने देखते रहिए, तभी जाकर आपके जो सपने हैं वो साकार होंगे. और इसके साथ ही सुभद्रा और फरहत को दीजिए कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाजत. नमस्कार.